अच्छा, इसी तरह की और एक कुछ हम देखते हैं, बाज़ लोग होते हैं जब रोज़ा रखते हैं तो वो पूरा दिन या सोकर गुजारते हैं, या वो ताश खेल रहे होते हैं, या वो टीवी देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि जी हम रोज़ा तो हमने रख लिया है ना, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, और नमाज भी चलें पढ़ लेते हैं,
रोजे को बहला रहे होते हैं।
रोज़े को बहला रहे होते हैं। तो ये इसको तो इस्लाम ने इस तरह से तो नहीं लिया होगा। इस्लाम तो चाहता है खुशू व खुजू जो आए आपके अंदर वो होना
कोई
चाहिए।
शक नहीं इसमें। देखिए, ये सब चीजें जितनी भी हैं वो हमारी तालीम की कमी, दीन की सही तरबियत के ना होने से पैदा हो रही है। अगर हम लोगों को बताएं कि आप एक तरबियत गाह में दाखिल हो रहे हैं, ये कमोबेश 720 घंटे की तरबियत गाह है, ये साल में एक बार मुनक्कद होती है, इसमें खुदा की बड़ी रहमतें आप हासिल कर सकते हैं, ये आपके लिए अपने आप को जांचने परखने का महीना है, इसमें अपने आप को इताअत का खुगर बनाइए, आप अपने अंदर जब्त नफ्स पैदा कीजिए, सब्र की सिफात पैदा कीजिए, तो यही हमारे लिए बड़ी कदर कीमत की चीज़ बन सकता है। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि एक रस्म के तौर पर रमज़ान आता है और रस्म के तौर पर ही हम उसे मनाते हैं, हम रमज़ान मनाते हैं, तो ये चीज़ जब पैदा हो जाती है तो फिर जाहिर आप ताश भी खेलेंगे, आप बैठ के गपशप भी करेंगे, आप फजूलियात में भी वक्त ज़ाया करेंगे, लघवियात भी हो सकता है कि आपके यहाँ बार पाले। ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं, जब आप सही रूट रमज़ान की लोगों को मुंतकिल करेंगे तो फिर उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा कि वो एक बड़ी इबादत में से गुजर रहे हैं, और इबादत को इबादत की शान के साथ करना चाहिए। यानी आप सोचिए ना थोड़ी देर के लिए कि अगर एक आदमी नमाज की नियत करे और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, फिर कुरान मजीद के कुछ हिस्से की तलावत करे, उसके बाद गज़ल सराई शुरू कर दे, क्या राय कायम करेंगे उसके बारे में आप? तो
अच्छा,
रोजे का पूरा वक्त भी असल में इबादत का वक्त है। आप इबादत में हैं, उस इबादत की रूह को समझिए और रोजे को रोजे की हैसियत से रखने की कोशिश करिए।
अच्छा गांधी साहब, एक हदीस में भी ये बात मिलती है और भी कई जगहों पर है कि एक तो रमजान के रोजे रखने, फिर कयामुल लैल की बात मिलती है। लेकिन अगर मैं इस चीज को इस तरह से रिवर्स कर लूं अपनी सहूलत को देखते हुए कि मैं कयामुल लैल के बजाय अपनी, मेरी फर्ज कर लेते हैं दुकान है, मैं अपनी दुकान जो है वो रमज़ानों के अंदर मेरे औकात जो है वो तरावी के बाद से लेकर सहरी तक मैं दुकान पे बैठता हूँ, ताकि जो है वो रोज़े की हालत ना हो, मैं ज़रा अच्छी तरीके से काम काज कर लूँ अपना, और फिर सहरी के बाद जो है वो मैं आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, तो कयामुल लैल नहीं हुआ और रोज़ा जो है उसमें मैं सोता रहा। तो ये हालांकि मैंने कोई इसमें गलत काम नहीं किया, कोई टीवी नहीं देखा, कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर लिया काम, ये ठीक है, मुनासिब है ये?
देखिए, बात यह कि इबादात के मामले में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है, हमें करीब तरीन रहना चाहिए उसके, जितना हम करीब रह सकते हैं, अपने मामूलात भी उसके मुताबिक करने चाहिए। आप एक चीज़ को जब अल्लाह के पैगंबर के बताए हुए तरीके से हटा देते हैं तो हो सकता है कि उसके ऊपर तनकीद करना मुश्किल हो या वो एक दायरा मुबाहात की चीज़ हो, लेकिन वो खैर व बरकत जो हुजूर के तरीके की पैरवी में हासिल होती है वो उससे आप महरूम हो जाते हैं। तो मेरे नज़दीक दीन के मामले में एक चीज़ तो हुजूर की दी हुई तालीम है, यानी आपने कुरान मजीद के जरिए से अपनी सुन्नत के जरिए से दीन वाज़े कर दिया। एक दूसरी चीज़ जो है वो आपका उसवा हसन है, आपने दीन पर कैसे अमल किया, आपने रात को क्या अहमियत दी, दिन को क्या अहमियत दी। रात का वक्त बहुत सोच समझ कर मुकर्रर किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, तहज्जुद के लिए, इबादत के लिए, क़ियामुल लैल के लिए, ये तन्हाई और यकसुई का वक्त है। ये वक्त है जिसमें ज़िंदगी के हंगामे सो जाते हैं, जिसमें आप होते हैं और आपका परवरदिगार होता है, ये खलवत का वक्त है। खलवत में इंसान की तवज्जो उसके बातिन की तरफ होती है, आपके बातिन को बेदार करना है। इबादत का मकसूद भी यही है, तहज्जुद का मकसूद भी यही है। इसमें ये बताया गया है कुरान मजीद में, यहाँ तहज्जुद के अहकाम दिए गए हैं कि ये असल में वो वक्त है कि जिसमें आप खुदा को याद करते हैं और तबत्तल रहे तब्दीला उसकी तरफ गोशागीर होते हैं। ये कैफियत आपको रात में हासिल होती है, तो इस वजह से रात का वक्त इसके लिए मौजूद है और हुजूर का अपना उसवा भी यही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मामूलात उसके मुताबिक रहे। आप जब इस तरतीब को उलट देते हैं तो आप असल में उसकी बरकत से और उसकी रहमतों से अपने के लिए।
अच्छा, एक बात जो जरा मैं चाहूंगा उसकी वजाहत कर दीजिए, रमजान में रोजों के दौरान ये कहा गया है कि जब तुमसे कोई झगड़े तो तुम कह दो भाई मैं रोजे से हूँ, यानी वो झगड़ने तक को जो है वो पसंद नहीं किया गया, उसकी वजह क्या है कि आपके तकवा में कमी हो जाती है? आप अगर किसी मामले में कोई, जैसे आम तौर पर हम देखते हैं ऑफिसों में और खास करके जब शाम को इफ्तार के वक्त जब अपने घरों पे जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक के अंदर बड़े आपस में जो है तनाजात होते हैं कि तुमने गाड़ी आगे निकाल ली, गाड़ी लग गई, ये मामलात बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट लूज कर जाता है आदमी। कहा गया कि भाई इसमें बता दिया जाए कि मैं रोजे से हूँ,
देखिए आप इसी की तो मशक कर रहे हैं, आप अपने आप को मुजस्सम इताअत बनाए हुए हैं, आपको बाकी ज़िंदगी के लिए तकवे की तरबियत दी जा रही है। तो अगर ऐन रोजे में, ऐन तरबियत के मौके पर आपने ये हरकत करना शुरू कर दी, झगड़ना, लड़ना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी पर पिल पड़ना, ये आला अखलाकियात और मकारमे अखलाक के खिलाफ है। आपके अंदर अगर एक आला अखलाकी वजूद परवरिश पा रहा है, उसे परवान चढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप इस तरह के मामलात करें? इंसान अपने नफ्स की तहजीब करता है तो जब्त नफ्स की ज़िंदगी बसर करता है, یعنی وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات پر، خواہشات پر، اپنے غصے پر، اپنی نفرت پر، ہر چیز کو قاعدے میں رکھتا ہے، نفرت حدود میں، محبت حدود میں. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. تو اگر یہ کارنامے کرنے شروع کر دیے تو پھر تو ساری کی سارا آپ نے معاملہ ہی
ضائع ہو گیا. بہت شکریہ قامری صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی رمضان کی روح اور ہمارے روزوں سے متعلق. قامری صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جو رمضان کی اصل میں جو روح ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، تقویٰ اختیار کرنا. اور جب ظاہر ہے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ساری کی ساری روح ضائع ہو گئی. اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمیں دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، ہمیں ممکن حد تک اسی تعلیم اور اسی پیرامیٹر، اسی اسوے کے اندر رہتے ہوئے قریب ترین شکل میں عبادت اختیار کرنی چاہیے اور رمضان کو اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.